ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। चौथी अध्याय समाप्त हुई है, जिसके अंदर ज्ञान और चारित्र का वर्णन किया है और मुख्य रूप से गृहस्थों के देश चारित्र का वर्णन करते हुए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने पूर्वाचार के ग्रंथों का सार बताया है। आप सभी पांच अणुव्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों के माध्यम से अपने सदगृहस्थ के जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर 11 प्रतिमा तक क्षुल्लक ऐलक की अवस्था तक पहुंचकर उत्कृष्ट श्रावक श्राविका के रूप में रह सकते हैं। और जब मुनि व्रत को धारण करेंगे तो सकल चारित्र प्रकट हो जाते हैं। अब आज मैं मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करती हूँ 12 व्रतों के अतिचार। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समार के। इस मंगलाचरण के पश्चात सीधे हम चौथी ढाल पे आते हैं, जिसमें 14 श्लोकों के माध्यम से अध्याय को समाप्त किया है। और उसमें कहा है कि 12 व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तस दोष न सावे। यानी 12 व्रतों के पांच पांच अतिचार हैं, उन अतिचारों को जब दूर कर देते हैं, वे अतिचार जब हमारे व्रतों में नहीं लगते हैं तो निर्दोष व्रतों का पालन होता है। और अंत में प्रेरणा दी है कि इन व्रतों का पालन करते हुए मरण के समय संन्यास को धारण करके, यानी दीक्षा लेकर के और संलेखना पूर्वक मरण करें। तो इस प्रकार से यदि कोई श्रावक भी व्रतों का निर्दोष रीति से पालन करके संन्यास पूर्वक प्राण को छोड़ते हैं तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और वहां सागरों की आयु बिताकर सम्यक दर्शन अपना स्थिर रख करके पुनः मनुष्य जन्म पा करके दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करने की उनकी योग्यता को इसमें निर्देशित किया है। हम इसमें जो बताए हैं कि 12 व्रतों के पांच पांच अतिचार हैं, उनकी ओर हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले जानना है कि अतिचार किसको कहते हैं। अतिचार माने व्रतों के एक देश भंग होने को, यानी कि व्रतों में दोष लगने को अतिचार कहते हैं। एक होता है अनाचार और एक होता अतिचार। अनाचार माने जिससे पूरा ही व्रत भंग हो जाए, समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं अनाचार। और अतिचार माने जिसमें दोष लग जाते हैं लेकिन व्रत अपना पालन हो रहा है तो उन दोषों का प्रायश्चित लेकर के और व्रतों की शुद्धि करते हैं। अब आई बात सबसे पहले पांच अणुव्रतों में कौन कौन से अतिचार लगते हैं। तो पहला व्रत कौन सा है पांच अणु व्रत में? अहिंसा अणु व्रत। अहिंसा अणु व्रत के पांच अतिचार बताए हैं, बंध, बध, छेद, अति भारारोपण, अन्न पान निरोध। माने किसी को अपने इष्ट स्थान से जाने से रोकने के लिए, कहीं जाना है और उसको रोकने के लिए गाय बैल को रस्सी से बांध देते हैं, तो ऐसा ये बंध नाम का अतिचार है, क्योंकि इसमें थोड़ा हिंसा का दोष तो लग ही जाता है, उसको बांध करके रखते हैं। दूसरा है बध, यानी कि लाठी से, तलवार से, चाबुक से प्राणियों को मारना बध है। बैलगाड़ी पर आपने कभी देखा होगा, बुग्गी गाड़ी पर, या जब पहले लोग तांगा रिक्शा इनमें बैठते थे तो चाबुक से घोड़े को बैल को मारते हैं, ये बध करना है। ये प्रियजनों के दुख हैं और मानव जो इनको मारता है तो वो व्रतों में अतिचारी है। तीसरा है छेद, तो नाक कान आदि अवयवों को छेदना, ये छेद नाम का अतिचार है। शक्ति से अधिक भार लादना अति भारारोपण है। गधे के ऊपर, बैल के ऊपर, घोड़े के ऊपर बहुत सारा जो उसकी शक्ति से अधिक भार होता है तो अति भारारोपण नाम का अतिचार है। तो ये किसके लिए भाई, जिन्हें पता ही नहीं है, जिन्होंने कोई व्रत ही नहीं ले रखे, केवल व्यापार करते हैं, अपना धंधा करते हैं, तो उनके तो दोष ही दोष रहते हैं, वे निर्दोष कैसे हो सकते हैं। लेकिन जिनने व्रत ले रखे हैं 5 अणुव्रत, तो उनको ध्यान देना विशेष रूप से कि हमने अहिंसा अणुव्रत ले रखा है तो हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक हिंसा का पाप लगे। तो अति भारारोपण भी एक तरह की हिंसा है कि वो बेचारा घोड़ा या बेचारा बैल जितने भार को लेकर चल सकता था उसके ऊपर लाद दिया। आप देखते होंगे फिर चलते चलते कितना हाँफने लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, लेकिन जो लेकर के चलते हैं उन्हें दया नहीं आती। तो यह अति भारारोपण नाम का अतिचार है। समय पर खाना पीना नहीं देना अन्नपान निरोध नाम का अतिचार है। ये भी अहिंसाणु व्रत के अंदर अतिचार को लगाते हैं। हमने देखा है बचपन के अंदर कि ऐसे सब इन सब तिरंच गति के पशुओं के दुख देख करके कई बार हमारी माँ कहती कि देखो आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, हम तांगे में नहीं बैठेंगे, हम जिनमें पशु ढोते हैं ऐसे उसमें नहीं बैठेंगे व्हीकल के अंदर। आज तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर हैं तो उन्हें दोष लगने की संभावना ही नहीं रहती। लेकिन किसी को कष्ट देना तो 5 तरह से कष्टों को बताया गया है। जो लोग गाय भैंस आदि पालते हैं उनके विशेष रूप से ये अतिचार लगने की संभावनाएं रहती हैं। ये हुए 5 अतिचार अहिंसाणु व्रत के। आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आप इन सारे के सारे अतिचारों से बच सकते हैं, यानी अहिंसाणु व्रत बहुत अच्छा पल सकता है। क्योंकि आज त्रियंचों की सवारी पर लगभग लगभग नहीं ही बैठा जाता, मैं समझती हूँ कहीं भले ही गांव बहुत आदिवासी इलाकों के अंदर लोग बैठते होंगे, वरना आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर रिक्शे हो जाने से ये सब नहीं होते हैं। तो अपने निर्दोष अहिंसाणु व्रत का पालन करना चाहिए। और दूसरा आया सत्याणु व्रत, उसके भी 5 अतिचार हैं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंद भेद। और सच बोलने का तो नियम है लेकिन उसके अंदर कैसे दोष लगते हैं। तो करे झूठा और अहित कर उपदेश देना मिथ्योपदेश। सीधा सीधा सम्यक दर्शन से रहित लोग जो है उपदेश देते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो ये मिथ्योपदेश नाम का अतिचार। दूसरा कहा रहो व्याख्यान, माने स्त्री और पुरुष कोई एकांत में बात कर रहे हैं उनकी क्रिया को प्रकट कर देना, ये रहो व्याख्यान है। और किसी का दबाव पड़ने से या स्वयं की इच्छा से दूसरे के लिए ऐसी झूठी बात लिख देना कि जिससे दूसरा कोई फंस जाए, कूट ले क्रिया। नाम से ही स्पष्ट होता है कि कोई ऐसी कूट नीति से कुछ लिख दिया जिससे कि सामने वाले को दंड मिल गया। तो ये कूट ले क्रिया नाम का सत्याणु व्रत का अतिचार है। और कोई आदमी अपने पास कुछ धरोहर रख दे, भूल से वो कम मांगे तो उसको उसकी भूल ना बताकर जितनी वो मांगे उतनी ही देना न्यासापहार है। माने किसी की धरोहर को हड़प लेना, उसने थोड़ा बहुत दे दिया क्या आप भूल गए होंगे, आपका इतना ही पैसा था या इतना ही सामान था, तो ये अपहरण कर लेना पैसे का या उसकी वस्तु का अपहरण कर लेना, ये न्यासापहार है। 5वां अतिचार है साकार मंत्र भेद। उसमें कहते हैं कि चर्चा वार्ता से अथवा मुख की आकृति से दूसरों के मन की बात को जान लिया और फिर लोगों के सामने इसलिए प्रकट कर दिया कि अब उसकी बदनामी हो जाए। उसकी चेष्टा को जितने समझे उतना बस। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग पूरी बात समझते नहीं है और उसकी चेष्टा को देख करके और उसकी बदनामी के लिए लोगों के सामने प्रकट करने लगते हैं। तो ये साकार मंत्र भेद है, सच बोल रहे हैं कि हमने देखा था लेकिन मन के अंदर इसकी बदनामी और अपने सम्मान की, अपनी कालर ऊंची रखने का जो भाव है, तो ये साकार मंत्र भेद नाम का अतिचार लगता है, दोष लगता है। सच बोलते हुए भी इन दोषों के कारण लोग बदनाम होते हैं। अब तीसरा अचौर्याणु व्रत है, उसके पांच अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग, तदार्थादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। आप सबको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पंच अनुव्रत को धारण करते हैं। पंच अनुव्रत बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जैसे अणुबम के अंदर इतनी शक्ति होती है पूरी दुनिया या आधी दुनिया को नष्ट कर दे, तो ऐसे अणुव्रत जिनको छोटे छोटे रूप में भी जो धारण कर लेने से तमाम कर्म को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, कर्मों की निद्रा कर देते हैं। इसलिए अणुव्रत होते हुए भी महान फलों को प्रदान करने वाले हैं। और अतिचार इसलिए बताए हैं कि उन दोषों से अगर अलग हो जाते हैं, उन दोषों को टाल सकते हैं, तो अपना व्रत जो है निर्दोष बन जाता है। तो विरुद्ध राज्यातिक्रम क्या है? चोर को चोरी के लिए प्रेरणा, स्तेन प्रयोग, चोर को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना और उसके उपाय बता देना। स्तेन प्रयोग, स्तेन माने चोर, चोरी चोरी करना, प्रयोग माने उसको बताना ऐसे चोरी करना एकदम पता न चलने पाए। तो ये स्तेन प्रयोग नाम का अति, खुद तो नहीं किया लेकिन दूसरे को चोरी करने की विधि बता दी। बहुत सारी बातें हैं जो लोग करवा लेते हैं। और दूसरा क्या है कि चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु को खरीदना तदाहर्ता दान है। इसमें तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। विदेशों से कोई सामान आया, चोरी से आया और उसको खरीद लिया, अगर उनको जेल हो गई तो फिर बिना जमानत की जेल हो जाती है। लोग आते हैं, माता जी किसी तरह छुड़वा दो। अरे भैया, अगर अपने अचौर्याणु व्रत को आप सुरक्षित रखते तो तदाहर्ता दान नाम का ये दोष भी नहीं लगता और आपको जेल नहीं होती। तो जेल तो जाने की बात अलग है, लेकिन अपने में दोष ये लग जाता है कि चुराई हुई वस्तु को खरीद लेना, राज नियम के विरुद्ध चोर बाजारी वगैरह करना विरुद्ध राज्यातिक्रम। अगर मान लो सरकार ने लगा दिया बैन कि चाइना का सामान आपको नहीं खरीदना है, फिर भी आपने उसको खरीद करके व्यापार करना शुरू कर दिया, तो विरुद्ध राज्यातिक्रम है। क्योंकि राज नियमों का पालन करना भी देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है। जितना कर्तव्य है धर्म का पालन करना, उतना ही कर्तव्य है कि जिस राज्य के अंदर, जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, उस देश के राज नियमों का पालन करना। तो विरुद्ध राज्य राजा के आज्ञा के विरुद्ध किया, तो विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का अतिचार होता है। चौथा है हीनाधिक मानोन्मान, यानी आदान प्रदान में बाण, तराजू, मीटर, लीटर आदि को कमती बढ़ती रखना हीनाधिक मानोन्मान है। लेने में तो ज्यादा कर लेना और देने में कम कर देना। लोग आजकल उसमें डीजल में मिट्टी का तेल मिला देते हैं और तमाम चीजों में। अब आज तो बहुत सारी मिलावट, अगर देखा जाए तो दुनिया बिल्कुल मिलावट की हो गई है, दोषों की ओर ध्यान ही नहीं है। और जब खाने की चीज में जब स्वास्थ्य के लिए अत्याचार किया जाता है, तब बड़ा दुख होता है कि घी के अंदर चर्बी मिला दी गई। भाई आपने चांदी सोने के अंदर कोई मिलावट कर दी तो उससे कम से कम पैसे की हानि होगी, लेकिन अगर घी में या खाने की चीज में मिलावट कर दी तो उसमें क्या, जो शाकाहारी भोजन है उसके अंदर मांसाहार की चीजें डाल दी गई। आज सरकार ने लेबल बनाया है क्या, हरे लेवल की का सामान खरीदें। तो ये सब जब ऐसे चोरी करी जाती है तो कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं, लेकिन नियम जब तक बनते हैं उससे पहले नियम को उल्लंघन करने की भी बातें आ जाती हैं कि किस तरह से हमें उसमें उल्लंघन करना है। तो लेने और देने की बांट में, लीटर वगैरह में या मिलावट करने में, तो इस प्रकार से हीनाधिक मानोन्मान है। और बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर असली भाव से बेचना प्रतिरूपक व्यवहार है। चांदी में क्या मिला दिया? सफेद सफेद जर्मन सिल्वर मिला दिया। पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि उसी से मिलती जुलती चीजों को लोग मिला देते हैं, तो ये प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार। और ये समझो कि अगर शाकाहारी वस्तु में मांसाहारी वस्तु मिला दी गई तो अतिचार नहीं है, वो तो अनाचार है, क्योंकि उससे तो व्रत पूरी तरह से भंग हो जाते हैं। अरे भाई, हमारे देश में अंग्रेजों को भगाने की नीति क्यों शुरू हुई? हम तो रही रहे थे 300 साल से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर कब्जा जमाया था, लेकिन मंगलचंद पांडे ने जब इस भेद को खोला कि देखो बंदूक की कारतूस के अंदर गाय का मांस मिलाया जाता है, और लोग कारतूस को दांत से काटते हैं तो मुंह के अंदर चमड़ा जाता है, ऐसी तमाम नीतियों को देखा कि हम किस तरह से परतंत्र हैं। और तब अंग्रेज की नीतियों का विरोध करने के लिए, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर आने के लिए मंगलचंद पांडे जो मेरठ के रहने वाले थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया और सालों सैकड़ों साल तक लड़ाई लड़ी, और उसके बाद महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग सामने आए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और सब ने भारत की अस्मिता की रक्षा करके परतंत्रता से हमें स्वतंत्रता की ओर लाए। आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर कम से कम मानवता का परिचय दें। आज जो इंसानियत जा रही है, हैवानियत आ रही है, मानव मानव के साथ मानवोचित व्यवहार नहीं कर रहा, तो ये मिलावट का युग इतना तेजी से आया है कि शायद ही बात हाइब्रिड, सारी चीजें हाइब्रिड आ रही है। आप कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे और कैसे धर्म का पालन करेंगे? तो मानवाओ, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें उसके सामने। अतिचारों का जो वर्णन किया है कि आपके व्रतों में कोई छोटा मोटा दोष लग गया, और आज जो लोग करते हैं, एक भाई भाई आए बोले कि ऑर्गेनिक हम अनाज जो है बेचते हैं। मैंने उनसे डायरेक्ट बात की कि भाई आज फर्टिलाइजर से उत्पन्न हुए अन्न को लोग खाते हैं, उनके शरीरों में नहीं लगता, नुकसान देता है। तो बोले हम ऑर्गेनिक हाथ से बने हुए उत्पन्न हुए अनाज क्या व्यापार करते हैं? मैंने उनसे पूछा कि क्या सच है ऐसा कि आप इतना सामान पैदा कर लें कि ऑर्गेनिक खाद से, यानी गोबर की खाद से जो पहले लोग बेचते थे? तो उन्होंने सच में बताया, बोले माता जी, मैं साधु के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। हम लोग फर्टिलाइजर का सामान लाते हैं और ऑर्गेनिक का लेबल लगा करके बेचते। अभी क्या है, ये अतिचार नहीं है, अनाचार है। आप किसी व्रत का तो पालन कर ही नहीं रहे, और अगर ऐसे व्यापार करते हैं तो केवल पाप की कमाई कर रहे हैं। इस जन्म में तो धन आ जाएगा, लेकिन अगले जन्म में नरक तिर्यंच गति के दुखों को भोगना पड़ेगा। इसलिए सबको ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थोचित व्रतों का पालन करें और उनको निर्दोष बनाने की कोशिश करें, और ऐसी मिलावट कभी ना करें कि अपने व्रत की जगह केवल पाप ही पाप हम कमाते चले जाएं। ये मैंने आपको अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार बताए। हम आगे चलते हैं, चौथा अणुव्रत है ब्रह्मचर्याणु व्रत। गृहस्थ में भी रह करके ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कर सकते हैं। माने कोई भी नारी जिसने विवाह कर लिया तो अपने पति के सिवाय हर पुरुष को भाई या पिता के समान समझे, हर पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी महिलाओं को बहन या माँ के समान समझे, ये होता है शील व्रत, और ये होता है ब्रह्मचर्याणु व्रत। अब इनमें दोष कैसे लग जाते हैं? पर विवाह करण, अपरिग्रहित इत्वरिका गमन, परिग्रहित इत्वरिका गमन, अनंग क्रीड़ा, काम तीव्रा विनिवेश, ऐसे 5 तरह से अपने ब्रह्मचर्य में भी अणुव्रत के अंदर भी दोष लगता है। यानी कि अपने पुत्र पुत्रियों का तो सबको विवाह करने का अधिकार है, व्रती बन गए तो भी, और दूसरों के लिए जैसे धंधा बना लेते हैं, अरे भाई तू उस लड़के को देख ले, वो लड़की अच्छी है, ऐसे करके विवाह कराते हैं। करना करण, ये पर विवाह करण नाम का अतिचार है। भाई आपने जब अपना घर बसाया है, अपने ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए कोशिश करें कि ना ज्यादा अनुमोदना करें। अतिचार दोष तो है ही, लेकिन अगर किसी के संबंध मीठे नहीं हुए और उनके बिगड़ गए तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बदनामी, कितना कष्ट, कितनी बातें सुनने को मिल सकती हैं कि हमने तेरे कहने से इतना कर लिया था, ये शादी तो बिल्कुल ही विफल हो गई। ये भी बात है, यहाँ दोष की बात चल रही है। तो दूसरा है कि पति रहित कोई वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्त्रियां हैं, उनके पास आने जाने से अपरिग्रहित इत्वरिका गमन नाम का दोष लगता है। ये अतिचार है, चाहे कितने अच्छे हैं, कोई अगर वेश्या के कोठे में एक बार चला गया तो उसको लोग खराब ही कहेंगे। या व्यभिचारिणी स्त्री के घर में अगर आना जाना है तो उसको खराब कहेंगे लोग, इसलिए ये दोष है। और पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, उनसे लेन देन रखना, राग पूर्वक बातचीत करना, ये परिग्रहित इत्वरिका गमन नाम का अतिचार है। तो हम जानते हैं इसका पति है, लेकिन अपना बातचीत चालू होने से वो हमारे प्रति भी आकर्षित हो रही है, तो उसके पास जाने आने से अपना दोष भी है और दूसरे के घर में पूरी अशांति भी होती है। वो अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहेगा, नाराज रहेगा, उसके घर की शांति भंग हो जाएगी और अपने को दोष लगेगा। इसलिए अपने को निर्दोष बनाने के लिए एक पत्नी में या एक पति में ही संतुष्ट रहना, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है। चौथा कहा, काम सेवन के लिए अन्य अंगों से काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है, और काम सेवन की पंचेंद्रिय विषयों की अत्यंत अभिलाषा रखना काम तीव्रा विनिमेश है। ये सब जो है बहुत गरिष्ठ भोजन करने से, आज आज कर लो भक्ष भक्ष का तो ज्ञान ही नहीं है, जंक फूड खाते हैं, स्कूल कॉलेजों के अंदर एकदम फ्रीली बच्चे घूमते हैं, किसी के साथ भी कोई भी संबंध बनाते हैं, हॉस्टल के अंदर भी रहे तो आउटिंग होती है और तो लड़के और लड़कियां आपस में संबंध बना के आ जाते हैं, तो ये कोरा पाप है। और ऐसे को अनुमोदना भी कभी नहीं देना। आपके बच्चे अगर कहीं पढ़ने जाने लगे तो निश्चित रूप से किसी गुरु के पास ले जाके सबसे पहले उनको नियम दिलवाना कि बाहर रहने तक आपका ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा, समझे ना। कोशिश करो बच्चों के अंदर संस्कार डालो, किसी से संबंध नहीं बनाना, और अपनी जाति के अंदर ही अरेंज मैरिज करना, लव अफेयर नहीं चलाना, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत को स्थिर करने के लिए, शील व्रत के पालन के लिए शिक्षाएं हैं। तो अतिचार तो अपने लिए हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को भी आगे की प्रेरणा जरूर दे करके और अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना, क्योंकि खानदान शुद्धि उससे जुड़ी हुई है। खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि, इन दो चीजों का जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब पांचवा आता है परिग्रह प्रमाण अणुग्रह। परिग्रह माने खूब सारा सामान इकट्ठा करना, लेकिन उसको सीमित कर लेना। वे एक घर है, उसके अंदर आप कितना सामान रखेंगे, जितना सामान आ सकता है, जितनी इच्छाएं हैं उनको रखना, लेकिन रखने के बावजूद भी बहुत सारी इच्छाएं बनी रहती। चीज अपने पास नहीं है लेकिन सोचेंगे पूरा मार्केट ही मेरे पास आ जाए, इतनी इच्छाएं हो जाती। कई महिलाएं जब साड़ी लेने के लिए निकलती हैं, एक दो साड़ी का बजट होता है, लेकिन दुकान की चकाचौंध देख करके सोचती हैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, उनका बस चले तो भाई कुछ तो परिग्रह की सीमा रखो। तीन लोग की परिग्रह के पाप से छूटने के लिए परिग्रह की सीमा रखना, तो इसमें आया क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम, कुप्य भांड प्रमाणातिक्रम, यानी अतिक्रमण करना। तो कैसे, जैसे खेत है, रहने के मकान है, जितना प्रमाण किया था चार मकान, फिर पता चला कि एक प्रॉपर्टी और मिल रही है तो उसको भी खरीद लिया, तो जितना प्रमाण किया उसका उल्लंघन करना ये क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम है, ये दोष है। मैं आप पहले से रख लो कि हम 10 मकान या 10 खेत या 100, उसको सीमित असीमित चीजें बहुत सारी कर ली, लेकिन गिनती तो रही, तो असीमित चीजों के पाप से मुक्त हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना इसको, कि ज्यादा से ज्यादा रख लें लेकिन असीमित परिग्रह के पाप से मुक्त हो जाए। फिर क्या कहा, कि चांदी तथा सोने के प्रमाण का उल्लंघन करना हिरण्य स्वर्ण प्रमाण अतिक्रम है। वह 100-200 किलो चांदी सोना इनका प्रमाण लिख लो पहले से कि हमारे व्रत में दोष ना लगे, और फिर अगर उसको उल्लंघन करते हैं तो उसमें दोष लगता है, उसका उल्लंघन ना करें, चीज बढ़ती है, या तो दान कर दें या फिर दूसरों को दे दें, अपने घर के अंदर ही दूसरे के नाम से कर दें। तीसरा अतिचार है गाय भैंस आदि तथा पशु गेहूं चना आदि अनाज के प्रमाण का उल्लंघन करना धन धान्य प्रमाणातिक्रम। आज भले ही गाय भैंस बहुत कम रखते हैं लोग, बाजार की थैली का दूध पीते हैं, केमिकल मिला हुआ, तो ये वाले दोस्तों निर्दोष तो हो ही नहीं सकते है। तो इनकी जो गोधन गजधन बाजधन ये सब पहले हुआ करते थे, आज भी कोई कोई तो रखते ही हैं, किसान लोग रखते हैं। तो जितना प्रमाण किया गेहूं चना आदि कोठार के कोठार भर लिए, तो जितना सोच लें कि भाई साल भर में 6 महीने में जितना खत्म होगा उतना रख लें, उसके बाद का प्रमाण भंग नहीं करना या भंग कर देना ये प्रमाणातिक्रम अतिचार है। नौकर नौकरानियों के प्रमाण का उल्लंघन करना दासीदास प्रमाणातिक्रम है। वस्त्र तथा बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना कुप्पे भांड प्रमाणातिक्रम है। कोठार के कोठार भरे रखे हैं बर्तन चाहे जितने, तो एक तो क्या है मेहमान आते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उसके हिसाब से रख करके, और बहुत ज्यादा पूरी दुकान कई दुकानों के जितना परिग्रह रख लेना और अपने प्रमाण को उससे ज्यादा पढ़ा लेना। यहाँ रख लेना बुरा नहीं है, लेकिन प्रमाण जितना किया है उसको आगे पढ़ाना ये अतिचार है, ये दोष है। तो अपने परिग्रह के प्रमाण को डायरी में जरूर लिख लेना चाहिए, क्योंकि अहिंसाण व्रत सत्याण व्रत अचौर्याण व्रत ब्रह्मचर्याण व्रत ये तो पालन करने की चीज है, लेकिन परिग्रह प्रमाण व्रत जो है उसको जब तक आप लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, और लिख करके रख करके फिर कभी ऐसे चांस आए तो अपनी डायरी को देखें कि हमने इतना प्रमाण किया था, अब इससे अधिक नहीं रखना है। अणुव्रत लेने वालों की प्राय करके खूब संपत्ति बढ़ जाती है, आप देख लो कभी अणुव्रत ले लीजिए, आपके पास अगर 1 लाख है तो आपको अगले ही साल पता लगेगा कि 1 करोड़ हो गया। तो उसे बढ़ा करके और उसका प्रमाण सीमा लिमिट मर्यादा कर लेने से परिग्रह की प्रमाण करने से दोष नहीं लगता और पुण्य बढ़ता है, इसलिए पांचों व्रतों के अतिचार कहे हैं। अब आगे दिव्रत और देश व्रत के भी अतिचारों का वर्णन मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ये आज का स्वाध्याय हुआ कि हम अणुव्रती बने और अणुव्रत हमारे निरतिचार निर्दोष पालन हो, गृहस्थ में भी रह करके बहुत सारे व्रतों का छोटे बड़े नियमों का पालन करके अपन मोक्ष मार्गी बन सकते हैं, इसलिए अणुव्रतों को बेझिझक लेना ही चाहिए। आचार्य शांति सागर महाराज जो इस युग के प्रथम आचार्य थे उन्होंने भी अपने अंतिम संदेश में कहा, बाबा नो संयम धारण करा भीउ नका भीउ नका, अर्थात हे भाई हे बहन संयम को धारण करो शक्ति के अनुसार, चाहे देह संयम चाहे सकल संयम, डरो मत दोष लगे तो उनका प्रायश्चित लो, लेकिन संयम को जरूर जरूर शक्ति के अनुसार पालन करो। यही आज के स्वाध्याय का सार। जाओ।